आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पिछले 24 घंटों में विक्टोरिया में आए दो नए स्थानीय कोरोना मामले। डिटेंशन सेंटर में रह रही 3 साल की तमिल बच्ची को इलाज के लिए ले जाया गया पर्थ। और भारत में महीनों बाद एक दिन में आए 1 लाख से कम नए कोरोना मामले। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य अधिकारी ये समझने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का डेल्टा संस्करण ऑस्ट्रेलिया में कैसे आया। इस बीच विक्टोरियन अधिकारियों ने मई में मेलबर्न के होटल संगरोध में प्रवेश करने वाले एक लौटे यात्री और शहर के पश्चिम में कोरोना वायरस के तथाकथित डेल्टा संस्करण के समूह के बीच में एक जीनोमिक लिंक पाया है। आपको बता दें, ये व्यक्ति 8 मई को श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया आया था और उसी दिन ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। 23 मई को होटल संगरोध से निकलने से पहले 14 मई को इसे नोवोटेल आइबिस से हॉलिडे इन हेल्थ होटल ले जाया गया था। उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रोफेसर एलन चेंग का कहना है कि अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि वायरस समुदाय में कैसे फैल गया, क्योंकि अभी तक किसी भी संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जानकारी नहीं मिली है।
We now have a source from which to start from, so we can start contact tracing or start investigations not only upstream from the North Melbourne families, but also downstream from this case. And this is similar to where New South Wales was with their Wallara case and his wife. Secondly, this also does mean that we have a start time for the outbreak, so we now know that it couldn't have been in Victoria before the 8th of May.
विक्टोरिया में पाए गए दो नए स्थानीय कोरोना मामलों में से एक क्लस्टर से जुड़ा हुआ बच्चा है, जबकि दूसरा आरकेयर वृद्ध देखभाल सुविधा से जुड़ा है। कार्यवाहक प्रीमियर जेम्स मैरिलोनो का कहना है कि दोनों मामलों में वायरस के फैलने का सीमित सामुदायिक खतरा है।
We remain on track to later in this week announce, as we've said we've planned to do all along, further easings of restriction in regional Victoria and careful easing of restrictions in Melbourne. This cluster was discovered after the lockdown was in place and nothing about today changes our plans.
फेडरल सरकार का कहना है कि वो क्रिसमस आइलैंड पर इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में रह रहे तमिल शरण चाहने वाले परिवार के लिए पुनर्वास विकल्पों पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि अदालत ने तत्काल आदेश के बाद इस परिवार को श्रीलंका जाने से रोका था, जिसके बाद अगस्त 2019 से ये परिवार वहां है। उनकी 3 साल की बेटी थार्निका को कल रात यानी कि 7 जून को लगभग 10 दिनों तक बीमार रहने के बाद उसकी मां प्रिया के साथ इलाज के लिए पर्थ ले जाया गया था और निमोनिया पाए जाने के बाद अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। गृह मामलों की मंत्री कैरन एंड्रयूज का कहना है कि सरकार व्यापक नीतिगत बदलावों पर विचार कर रही है जो परिवार को प्रभावित कर सकते हैं।
We are going through the process now of investigating a range of resettlement options in relation to a number of different circumstances here in Australia. I can't make public commentary on that at the moment because I don't want to disrupt those negotiations. We are going through the process now of investigating a range of resettlement options in relation to a number of different circumstances here in Australia. I can't make public commentary on that at the moment because I don't want to disrupt those negotiations.
आपको बता दें कि थार्निका ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में रहने वाले सबसे कम उम्र के बच्चों में से एक है। विक्टोरिया पुलिस का कहना है कि 100 अपराधियों को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंक्रिप्शन ऐप के डेटा का विश्लेषण करने में पुलिस को सालों लगेंगे। पुलिस द्वारा डिज़ाइन किए गए ANOM ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हत्या की साजिश, हथियार खरीद और बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी पर चर्चा की गई। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस का कहना है कि उसने ऑपरेशन आयरन साइट के तहत 3.7 टन ड्रग्स, 100 से अधिक हथियार और लगभग $45 मिलियन की नकदी जब्त की है। विक्टोरिया पुलिस के सहायक आयुक्त बॉब हिल का कहना है कि ऐप पर पाई गई हत्याएं अक्सर संगठित गिरोहों के बीच विवादों पर आधारित होती हैं।
Yeah, removing, I suppose, competition. Again, using their muscle to impose themselves on other individuals that have also got a criminal background predominantly. But we know they get it wrong. They are not the most intelligent individuals in terms of their execution or attempted execution of people. It has failed them time and time again. That's what makes it so dangerous.
अब खबरें भारत से। सबसे पहले बात करते हैं भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर। दो महीनों से भी ज्यादा समय के बाद देश में कोरोना संक्रमण के 1,00,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोविड संक्रमण के 86,498 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा,
In the recent past only a couple of weeks back, we had over 37 lakh active cases in the country. Our recovery rate is continuously climbing up and it is right now 93.94%. In the last 24 hours, we have had the least number of cases in the last 61 days.
भारत में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोरोना टीकों की कीमतों पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया था, जिसके बाद सरकार ने नई घोषणाएं की हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र राज्यों को 75% मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगा।
18 साल के ऊपर के लोगों को भी सरकार मुफ्त वैक्सीन देगी राज्यों को और राज्यों के द्वारा उनको दी जाएगी। पहले राज्यों ने मांग की थी कि खरीद की व्यवस्था हम करेंगे, बाद में सब राज्य कहने लगे कि ये केंद्र ही करे, तो संघ राज्य भावना के तहत मोदी जी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया। आगे भी 75% टीका ये केंद्र सरकार खरीद करेगी और राज्यों को मुफ्त में देगी। दूसरी उन्होंने बड़ी बात कही कि ये कोई भूखा न सोए, इसके लिए अब इस बार 6 महीने मुफ्त राशन दे रहे हैं। अब 5 किलो के दर से 6 महीने का 30 किलो अनाज लोगों को मुफ्त मिलेगा।
टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। एक अभियान के अंतर्गत 45 साल से ज्यादा उम्र के दिल्ली वासी अपने पोलिंग सेंटर्स पर वैक्सीन पा सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अभियान के बारे में खुद जानकारी दी।
45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। हम लोगों को जाके कहेंगे कि जहां आप वोट डालने जाते हो, सबको पता है कि हम कहां जाते हैं वोट डालने, आप वहीं पे जाइए, आपके वैक्सीनेशन का वहां पे हमने इंतजाम किया हुआ है।
अब डालते हैं डॉलर पर नजर। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.42 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 77 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री संस्कृति एवं खेल सचिव के इस विचार से सहमत हैं कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड को 2012 में नस्लवादी और लिंगभेदी ट्वीट पोस्ट करने के लिए तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन के निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रॉबिन्सन को निलंबित करके बेहद कड़ी सजा दी गई है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रॉबिन्सन को भेदभावपूर्ण ट्वीट करने के लिए जांच लंबित रहने तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में पहले टेस्ट में धीमी ओवर गति के लिए इंग्लैंड टीम पर उनकी मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि ICC मैच रेफरी क्रिस बोर्ड ने यह जुर्माना तय किया है। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां बारिश होने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में भी सुबह हल्की बारिश हो सकती है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहां तेज हवाएं भी चलेंगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की, जहां कल तेज बारिश हो सकती है। यहां के तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं सिडनी की, जहां कल बादलों के साथ बारिश होने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन के आसमान में बादल रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में मौसम साफ रहेगा। यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।